ओम शांति, ओम शांति। हम सब के समक्ष आदरणीय सतीश भाई जी उपस्थित हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सतीश भाई जी, आप यूपी सुल्तानपुर से हैं और आप 55 वर्ष से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और 45 वर्षों से आप माउंट आबू हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 25 वर्ष से आप संस्था के आर्ट एंड कल्चर विंग के अंदर आप मुख्यालय संयोजक का सुंदर किरदार निभा रहे हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यज्ञ में आप जब से आए हैं, आपने अपना अमृत वेले का बहुत सुंदर रिकॉर्ड बनाए हैं। एक दिन भी आपने मिस नहीं किया है, बहुत अलर्ट होकर करते हैं। साथ में आपने चार्ट लिखना भी कभी मिस नहीं किया है। और आपकी सबसे बड़ी विशेषता, जो आपने लगभग 6000 गीतों की रचना किए हैं, जिसमें से 600 से अधिक गीतों को सारे सुप्रसिद्ध गायकों ने, बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उन्होंने गाए हैं, जैसे महेंद्र कपूर, आशा भोसले जी, अलका याग्निक, सोनू निगम आदि। ऐसे अनेक विशेषताओं के धनी आदरणीय सतीश भाई जी से हम सुनेंगे। संगम युग, रूहानी मौजों का युग, तो इस पर आप सुंदर रीति से हमारे सामने रखेंगे वक्तव्य। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय सतीश भाई जी से।
ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। सर्वप्रथम होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा के गोद में आने वालों का, मनसा में भी होली बनने वालों का, होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद लेने वालों का, होलीएस्ट देवी देवता बनने वालों का और ख्यालों में भी पवित्र रहने वालों का, होली बनने वालों का, खुशबूदार फूल बनने वालों का, कोई उल्टा कर्म न करने वालों का, अपने अंतर्मुखी होकर के जांच करने वालों का कि मेरे से सबको खुशबू आती है और मेरी आग कहीं डूबती तो नहीं है, इस बात की जांच करने वालों का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसे समर्पण भाव से रहने वालों का, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिस दिल को खाती रहे, खुशबूदार फूल बनने वालों का, देह अभिमान की बदबू मिटा देने वालों का, चलन बड़ी राल रखने वालों का, होली स्टाफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करने वालों का, दृष्टि कहीं खराब ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए, इस बात का ध्यान रखने वालों का, नाउमीदी की चिता पर बैठे हुई आत्माओं को नए जीवन का दान करके उनको जो है त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न बनने वालों का, और न्यारे अधिकारी बनकर के कर्म में आने वाले, बंधन मुक्त स्थिति में रहने वालों का, अशरीरी बनने का अभ्यास करने वालों का, आज के इस सत्र में डायमंड हॉल में बैठे आप सब डायमंड्स का, और सीजन में प्रभु मिलन का आनंद लेकर के अपनी झोलियों को भरपूर करके रूहानी मौजों का अनुभव करने वाले आप सर प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं का आज के सत्र में मधुबन की ओर से, मधुबन के बाबा की ओर से, दादियों की ओर से, सभी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत बधाई। संगम युग रूहानी मौजों का युग है। सबको मौज आया है, संगम युग का आनंद मिला है। आप में से जो समझते हैं खूब आनंद आया है इस युग में, इस जीवन में बाबा के बनने के बाद, वो हाथ उठाएं। वाह, सब हाथ उठा रहे हैं। तो अपना एक बार अभिनंदन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। आज की एक रचना है और चूंकि अभी भी लिखा है इसलिए याद नहीं है, मैं पढ़ के आपको कविता सुनाता हूं, गीत। संगम युग मौजों का युग है, युगों में सबसे उत्तम है। संगम युग मौजों का युग है, युगों में सबसे उत्तम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है। प्रभु मिलन का मौसम है, प्रभु मिलन का मौसम है, प्रभु मिलन का मौसम है। संगम युग की घड़ी सुहानी, समय बड़ा वरदानी है। भक्तों को भगवान मिला, बच्चों को पिता रूहानी है। मिलता है मनमीत बनाता हमको ये पुरुषोत्तम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है। प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है। संगम युग के सुख के आगे, संगम युग के सुख के आगे वो सतयुग का सुख भी क्या। सतयुग है सोने जैसा, तो संगम युग हीरे जैसा, तो संगम युग हीरे जैसा, संगम युग हीरे जैसा। प्रभु मिला, प्रभु प्यार मिला, परिवार मिला ये अनुपम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है। प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है। कलयुग सतयुग का संगम ये युग है निराला और न्यारा। पुचकार प्यार प्रभु का प्यारा, वहां क्या पाएंगे देवताओं द्वारा, वहां क्या पाएंगे देवताओं द्वारा। हम अति इंद्रिय सुख में झूमे, आनंद में झूमा आलम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है ये, संगम युग सर्वोत्तम है, संगम युग सर्वोत्तम है। युगों के तप का फल मिला, युगों के तप का फल मिला। भगवान मिला भाग्यवानों को, हमें विश्व का मालिक बना रहा। दे करके सर्व खजानों को पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद का बजता सरगम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है ये, संगम युग सर्वोत्तम है। मौलाई मस्ती में उड़ते, मौलाई मस्ती में उड़ते, तोड़ के हर जंजीरें हैं। मौलाई मस्ती में उड़ते, तोड़ के हर जंजीर हैं। बेगमपुर के बादशाह हम बन गए मस्त फकीर हैं। वाह भाग्य वाह भाग्य विधाता, गीत लबों पर हरदम है। प्रभु मिलन का मंगल मौसम, संगम युग सर्वोत्तम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम है ये, प्रभु मिलन का मौसम। संगम युग का एक एक पल हम सबके लिए वरदानी है, आनंद से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा है, सर प्राप्तियां कराने वाला है। संपूर्ण कल्प का सार संगम युग में ही प्राप्त होता है। हम सबको इसी युग में प्रभु मिलन हुआ, भगवान मिला, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको जानते तक भी नहीं है, कई तो मानते भी नहीं है, और जानते मानते भी हो तो कोई पहचानता भी नहीं। और हमने जाना माना पहचाना, उसके बन गए और संगम युग खुशहाल हो गया और हम बेमिसाल हो गए, हम बेमिसाल हो गए। और इसी युग में हमको भगवान मिला, तो भगवान के बाद जो ज्ञान मिला वो सबसे बड़ा ज्ञान मिला, आत्मज्ञान मिला। सारी दुनिया का ज्ञान है लोगों के पास, लेकिन स्वयं का ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, और आत्मज्ञान पाके हुए दूर देहभान से। ये ज्ञान तो था ही नहीं कि हम कौन हैं, सारी दुनिया का ज्ञान, लेकिन हमको अपनी पहचान नहीं थी। आत्मज्ञान मिलना बहुत बड़ी बात है, और हमको आत्मज्ञान ही नहीं, परमात्म ज्ञान ही नहीं, बल्कि हमको सृष्टि चक्र का भी ज्ञान मिल गया। सबका तो ज्ञान मिल गया, इतना सटीक, इतना स्पष्ट, इतना प्रभावी, इतना अर्थपूर्ण, इतना विवेकपूर्ण, न्याय संगत नियम प्रमाण, ऐसा कभी भी किसी को ज्ञान नहीं मिला जो भगवान ने हमको दिया। और ऐसा ज्ञान मिला कि हमको निश्चिंत कर दिया। हमारे इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है सृष्टि चक्र का ज्ञान। जब हम सृष्टि चक्र का ज्ञान पा जाते हैं तो हम इसकी खूबी को जान जाते हैं और जीवन जो है अनमोल बन जाता है। ड्रामा का ज्ञान अद्भुत है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा बहुत खूबसूरत है, ये ड्रामा भगवान को भी पसंद है। इस ड्रामा में हर एक दृश्य एक से एक बढ़कर के नया है। इस ड्रामा में सबका वैरायटी पार्ट है, जैसे विविध रंग के फूल खिले हों कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे विविध सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, कितना सुंदर है। और इस ड्रामा की खूबसूरती यह है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। प्रायः जब अपने भाई बहने ज्ञान में आते हैं और उनको बताया जाता है कि ये ड्रामा रिपीट होता है, तो कहते अरे भैया फिर होगा क्या, डर जाते हैं, फिर वही होगा, फिर ऐसे होगा ना भाई, ये ठीक नहीं। शुरू में डर लगता है क्योंकि दिन अच्छे नहीं बीते होते हैं, पिछले दिन जो भी होते हैं सबके साथ कुछ न कुछ हुआ होता है, घबराहट हो जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ज्ञान का आनंद मिलता है, ईश्वरीय मिलन होता है और अनुभूतियां होती हैं, तब लगता है वाह, वो अगर ना हुआ होता तो ये दिन क्यों मिलता, वाह रे ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह के हम सब गीत गाने लगते हैं। और ड्रामा की खूबसूरती यह है कि इस ड्रामा में जो होता है वो अच्छा ही होता है। नॉर्मल आज की दुनिया में किसी को कहो तो लोग कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन ज्ञान तो यही है, सब जानते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा, और जो होगा, बोलिए जो होगा बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा हो गया। क्या हुआ जो रो दिए, लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। जो लिया सब कुछ यहीं से, जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लुट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और होगा जो अच्छा ही होगा। कल तलक जो तेरा था आज है किसी और का, और कल किसी का हो जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। शिव की रचना सत्य सुंदर है, सुमंगल और सुकर, अरे सोच करके क्या हुआ, चिंता करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और होगा जो अच्छा ही होगा। और बदलते इस विश्व का सब कुछ बदलता जा रहा, बदलते इस सृष्टि का सब कुछ बदलता जा रहा, चिंता करके क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले। पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप सबको लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? हाँ, सब हाथ उठा रहे हैं, सब हाथ उठा रहे हैं। कौन हाथ नहीं उठा रहा है? सब कोई है, मुझे तो नजर नहीं आ रहे ना? और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, पक्का? अगर ये ज्ञान आ जाए तो कभी भी आपको चिंता नहीं हो सकती। हम सब ब्राह्मणों को दो पार्ट तो पक्का है, दो पार्ट पक्का है। क्या पार्ट पक्का है? कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जान गए हम सब। और ये भी पार्ट पक्का है कि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन फिर करना क्या है? जो बीच वाला पार्ट है वो पक्का करना है। जब कोई घटना घटती है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कोई बात हो रही है, उस समय याद नहीं रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उस ड्रामा में कल्याणकारी है, वो कल्याण है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो हमारी स्थिति मौजों की स्थिति हो जाए, खुशहाल स्थिति हो जाए, आनंदमय स्थिति हो जाए। तो ये पाठ पक्का करना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब ये बात हम सब जान गए कि आज जैसे बाबा ने वरदान में कहा, आप त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न है, एवर हैवी हैप्पी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, हम सब को वरदान मिला है। सोचिए, संगम युग में पल पल प्रभु मिलन हो रहा है, ईश्वरीय स्मृति से, ईश्वरीय याद से हम सब आनंद विभोर हैं। आनंद ही आनंद भर गया है, कोई बात ही कोई संगम युग में शिकायत नहीं। लोगों के मन तो भरे हैं, शिकायत ही शिकायत है, और हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं है। कोई शिकायत? शिकायत है किसी को? कंप्लेंट है? बाबा कहते हैं नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेन ना हो, कोई कमेंट ना हो, कोई कंपेयरिंग ना हो, कोई कंपेयर ना करे, बल्कि कंप्लीट बने। इसलिए समय आ गया है हम सब संगम युग के इस महत्व को समझें कि ये मौजों का युग है, आनंद से भरा युग है। इन आनंद भरे पलों को कहीं हम ऐसे तो नहीं गंवा रहे हैं? क्या उलझनों में, तेरा मेरा में, कंफ्यूजन में कहीं हम इस प्राप्ति के अनमोल हीरे को कहीं गंवा तो नहीं रहे? हम अपने आप से चेक करें कि क्या प्रभु मिलन के युग में भी, आनंद भरे युग में भी कहीं हम बीच बीच में शिकायत तो नहीं करते हैं, क्या करूं, होता नहीं है, अमृत बेला मिस हो जाता है, योग मेरा लगता नहीं है, बुद्धि बहुत भटकती है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, योग में बैठते हैं तो नींद आती है, नींद करने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, ऐसा कहीं शिकायत तो नहीं है? कहीं ये शिकायत तो नहीं है कि भैया मुरली नहीं सुन पाते हैं, मुरली याद नहीं रहती है, मुरली सुनने बैठते हैं तो झुटका आता है, आलस्य लगता है? कभी ये शिकायत तो नहीं है कि घर वाले तंग करते हैं, संबंधी तंग करते हैं? कहीं ये शिकायत तो नहीं है भैया शरीर ठीक नहीं रहता है, बीमार रहते हैं, चला नहीं जाता है, खाना हजम नहीं होता है, उमंग नहीं होता है, स्फूर्ति नहीं होती है? कहीं ये शिकायत तो नहीं? कहीं बंधन की शिकायत तो नहीं है? कहीं कमजोरियों की शिकायत तो नहीं है? अगर हम इन शिकवा शिकायत में ही संगम युग के अनमोल पलों को हम गंवा देंगे तो संगम युग का आनंद कब लेंगे? भगवान मिला, सब कुछ मिला, फिर भी इच्छाओं अपेक्षाओं की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो पालूं। इस ईश्वरीय यज्ञ में हमने देखा, जब शुरू से आए तो पहले संकल्प चलते थे कि कैसे ज्ञान में चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या होगा। संबंधी भी बोलते थे कि बड़े हो जो आओगे तो कोई मिलेगा नहीं, शादी वादी नहीं करोगे तो कौन संभालेगा, कौन देखेगा, दुनिया में तो यही शिकायत होती है। लेकिन जब मधुबन में आया और देखा एक एक को, अपने एक एक रतन को देखा, विश्वरतन दादा को देखा, इन दादियों को देखा, पूरा जीवन जिन्होंने परमात्मा मिलन में, ईश्वरीय स्नेह में, ईश्वरीय अनुकंपा में पूर्वज और पूज्य बनकर जिन्होंने पाठ बजाया, ऐसी विभूतियों को देखे, देख के आनंद आ गया, वाह क्या जीवन है इनका। तो उससे भी ज्यादा लौकिक वाले कहते हैं कि भैया बुढ़ापे का सहारा क्यों होगा, आजकल किसको कौन सहारा देता है, बूढ़ों को तो वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जब जब होते वृद्ध जनों में, मन में होती श्रद्धा कम, गली मोहल्ले में खुलते जाते हैं वृद्धाश्रम, तब तक वृद्धाश्रम खुलते जाते हैं क्योंकि श्रद्धा रही नहीं, स्नेह रहा ही नहीं, संबंध सब टूट गए। इसलिए ये संगम युग का दिन, भगवान जिनका केयर करे उनको किसी के केयर की क्या जरूरत है, जिन्होंने भगवान को साथी बना लिया है उनको किसी और के साथ की क्या जरूरत है। जो हजार भुजाओं वाला जो साथ दे रहा है, उनको दो हाथ दो भुजाओं वाले इंसान के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है, केवल निश्चय होना चाहिए। तो आइए संगम युग में निरंतर मौज का अनुभव करें, रूहानी मौज का अनुभव करें, इसको आनंद से भर दें, पल पल अपना सफल कर लें, कल्प कल्प के लिए अपने भाग्य को संवार लें। और ये जब पूरा ड्रामा पूरा दिखाया जाए कि आपने कल्प भर के लिए आपका रोल क्या है, और आपको आपका वीडियो बना के दिखाया जाए एक दिन का, तब आप वीडियो देखकर, अपनी फिल्म देखकर, अपना ड्रामा देखकर, अपनी एक्टिंग देखकर आपका मन कहे वाह क्या रोल है, क्या दिन बीता है, एक एक दिन अनमोल है, आपको अपना रोल देख के आपको आनंद आए और लोगों को ऐसा लगे कि सारी दुनिया आपकी क्लैपिंग कर रही है, क्लैपिंग कर रही है, क्लैपिंग कर रही है, बधाइयां दे रही, वाह क्या रोल किया है। संगम युग के दिन बीते ऐसे अनमोल बीते हैं, कभी कभी मायूसी आ जाती है, कभी कभी चिंताएं हो जाती हैं, कभी कभी जितनी खुशी होनी चाहिए पारा कम हो जाता है। आए देख लें कब कहां कौन सी बात की हमारी शिकायत होती है, तो आज हम सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि हमारी दिनचर्या में चलते चलते सब कुछ मिलते हुए भी यदि हमारी खुशी का पारा कम होता है तो क्यों कम होता है, वो लीकेज कहां है, मिसिंग पॉइंट कौन सी है, वो क्या बात है जो हमारी खुशी को कम कर देती है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप में से कौन सदा खुश रहना चाहता है, सदा खुश रहना, कोई नहीं भी हाथ उठा रहे हैं, कोई ऐसे से कर रहे हैं, वो पूरा खुश होना नहीं चाहते हैं, बोलिए सब खुश रहना चाहते हैं, लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ, लंबा हाथ, ठंडी तो नहीं लग रही अभी, लंबा हाथ उठाइए, क्या बात है, बहुत अच्छा, एक बार अभिनंदन कीजिए, खूब अभिनंदन कीजिए, निरंतर खुश रहना केवल हमारी स्वस्थिति नहीं है या स्वांता सुखाय नहीं है, निरंतर खुश होना बहुत बड़ी सेवा है। जहां भी आप जाएं आपका जीवन प्रेम और प्रसन्नता से लबरेज रहे, आनंद विभोर रहे, परमात्म प्रेम में स्नेह में सने रहे, आनंद में ही रहे, उसके लिए पहली बात मन में अपने रख ले, ये नोट कर ले, पहला है स्नेह मूर्त बन जाएं, स्नेही मूर्त बन जाएं। प्रेम, प्रेम का प्रादुर्भाव हो हमारे हृदय के अंतर की गहराइयों से। ये प्रेम हमारे पास है, हमारा स्वरूप है। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जिसने प्रेम का अनुपान कर लिया और जिसने परमात्म प्रेम का अनुभव कर लिया, जो सबको प्रेम बांटता रहता है, जिसका प्रेम से जीवन भरा हुआ है, उसको और क्या चाहिए। लेकिन इस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं हो, इस प्रेम में कोई शर्त ना हो, इस प्रेम में कोई डिमांड ना हो, इस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ जो है वो परमार्थ नहीं करने देता है। कहते हैं अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो बंद दिल और दिमाग की खिड़कियां कि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। ये अंतर से निकलना चाहिए। ये प्रेम है, सबसे अच्छी भाषा है प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा, अरे ये प्यार की भाषा, सबसे अच्छी भाषा है प्रेम की भाषा। आंखों में लिख जाती है दिल की परिभाषा। प्रेम बिना तो जग है जैसे कांटों का जंगल, जहां प्रेम है वहीं पर मिलता मां का भी आंचल। प्रेम मिले मानो तो क्या प्राणी की अभिलाषा, सबसे अच्छी भाषा है प्रेम की भाषा, प्यार की भाषा, अरे ये स्नेह की भाषा। प्यार की सूखी रोटी लगती है अमृत जैसे, महल दुमहले 56 व्यंजन प्यार बिना फीके। प्यार से हिलमिल रह के रहे हम प्रभु की ये आशा, सबसे अच्छी भाषा है प्रेम की भाषा, सबसे अच्छी भाषा है प्रेम की भाषा। भगवान को सबसे बड़ा कहते हैं प्यार का सागर है। अगर इस प्यार को हम पहचान लें, इस प्यार में कहीं कोई भी डिमांड ना हो जैसा कहा, तो ये प्यार हमारे लिए अनमोल हो जाता है। बाबा यही कहते हैं कि बच्चे बाबा को प्रेम तो करते हो, लेकिन बाबा को इससे खुशी नहीं होती है। बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम रहते नहीं हैं, हैं? और आपस में मिलते ही नहीं किसी से। तो भगवान कहते हैं, बाहर दुनिया में भी कहते हैं, बंदों से नफरत करते हो, बंदों से नफरत करते हो और खुदा से प्यार, ऐसे प्यार से खुदा भी करता है इनकार, ऐसे प्यार को खुदा भी करता नहीं स्वीकार। इसलिए अगर परमात्मा का प्यार पाना है तो सबको प्रेम बांटते चलो, सबको प्यार बांटते चलो, आनंद बांटते चलो, ऊर्जा से भरते चलो। ठीक है, तो पहली बात क्या करेंगे, स्नेही मूर्त बन जाएं। ये स्नेह में सब कुछ आ जाता है। उसके लिए क्या करें, अपने इस शरीर को भी, इसको भी प्यार करें। इसको प्यार करते हैं, कौन प्यार करता है, सब प्यार करते हैं इसको। आप कहेंगे बॉडी कॉन्शियस थोड़ी करना है, नहीं, ये बॉडी कॉन्शियस नहीं, इसको नहीं। जब हम इसको कहते हैं तो मैं अलग होता हूं, ये अलग होता है। ये शरीर किसका है, किसका है, किसका है, ये बाबा का है। सबने बाबा को दिया है, बाबा को दे दिया है, बाबा सब कुछ तेरा। जिसने दे दिया है वो हाथ उठाओ, सब दे दिए, सच है। लेकिन देखे ले भी लेते हैं, देते भी हैं और ले भी लेते हैं। ये शरीर को निमित्त भाव से ये कहना कि ये परमात्मा की देन है, मैंने बाबा को दे दिया और बाबा ने कहा बच्चे ठीक है मुझे दे दिया ना, अब मैं तुमको ही देता हूं कि इसको प्रेम से अच्छे ढंग से संभालना, ध्यान रखना, ये कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं दे रहा हूं, अब ये तुम्हारी अमानत नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा की अमानत है, अब सब मेरी अमानत है। इस अमानत में मैं और मेरा की कभी भी खयानत नहीं डालना। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। है पास जो भी है, पास तेरे पास जो भी, वो सब प्रभु की अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। अरे सब कुछ तेरा, ये मान ले सब कुछ तेरा हो जाएगा और मन विमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मन विमल हो जाएगा। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो, कल्याण करता चल तेरा, खुद ही भला हो जाएगा और आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। उसको सौंप दे, इसको प्यार करें निमित्त भाव से। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उसको इतना खिलाओ पिलाओ। एक बार एक हाथी को, बूढ़े हाथी को राजा ने गांव में दे दिया। वो बूढ़ा मरने वाला था हाथी, तो जब गांव में दे दिया और राजा ने कहा कि देखो इसको संभाल रखना, इस हाथी को बचा के रखना, मरने न पाए। अगर किसी ने शिकायत किया और बताया कि हाथी मर गया तो उसकी खैर नहीं। तो जब गांव में दिया तो सबने सोचा बूढ़ा हाथी है, कहीं जल्दी न मर जाए। सबने मिलके खूब खिलाया पिलाया, वो जल्दी ही मर गया। अब कौन कहे कि भाई हाथी मर गया, तो कौन किस, सबको अपनी जान प्यारी है, कोई तैयार ही ना हो राजा के पास जाने का। तो एक नवयुवक जाकर के राजा के पास गया और बोलता है कि राजा साहब बड़ा गजब का हो गया। कहा क्या हो गया? कहा हाथी ना उठ रहा है ना बैठ रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, ना सो रहा है ना जाग रहा है, ना सांस ले रहा है ना सांस छोड़ रहा है, ना बंद कर रहा है। तो कहते हैं हाथी मर गया क्या? कहते हो तो आप बोलो, मैं थोड़ी बोलूंगा, हम थोड़े बोलेंगे है? किसको अपनी, सबको जान प्यारी होती है। इसलिए इस शरीर को चलाना है, निमित्त भाव से संभालना है। मैं मोटा हो जाऊं, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं ये किया तो माया आई, मैं आया समझो आई माया, मैं आया समझो यही है माया। इसलिए अपने आप को तैयार करना है, मैं और मेरा से मुक्त रहे, स्नेही मूर्त बन जाए। दूसरा है शक्तिशाली बने। शक्तिशाली फिटेस्ट जो होगा वही सरवाइव होगा दुनिया में। आने वाले दिनों में ऐसी सरकमटांस बनेगी, हम सब जानते हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि आने वाला समय कैसा होगा। क्या उस आने वाली चुनौतियों को, उस आने वाले समय को, उस आने वाले जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जो परीक्षाएं हैं, क्या उनमें हम पास होने के लिए अपने आप को तैयार किए? तैयार करना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। बिना शक्ति के हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। स्नेही बने लेकिन शक्तिशाली भी बनना होगा। ज्ञान सुनते सुनते अपने आप से पूछें, ज्ञान का बल जमा हो रहा है? ज्ञान का बल है कि जो बाबा ज्ञान मुरली में सुनाते हैं उसको याद करना, समय पर याद रखना, समय पर प्रयोग में लाना और उसको सफलता से यूज करना। अगर हमारे पास हथियार हो और समय पर काम ना आए या वो चले ही नहीं, तो उसके उपयोगिता का, उसके अपने पास उपलब्धि का कोई मायने नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान केवल सुनने और सुनाने का नहीं, इन्फॉर्मेशन का नहीं, सूचना का नहीं, हमें ज्ञान मिला है ज्ञान बल का प्रयोग करना। आज की जिसे मुरली है, इस मुरली को जिनका बाबा से बहुत प्यार है, ये इशारा है कि वो बाबा के मुरली को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, रमण कर रहे हैं उसमें, औरों को सुना रहे हैं। वही उनका ओढ़ना हो गया है, वही बिछौना हो गया है, वही भोजन हो गया है। इसलिए आनंद लेना है तो ज्ञान की मुरली को आनंदित हो। जिसने मुरली को और अमृत वेले योग को अपनी शक्ति बना ली, वो कभी भी शक्तिहीन नहीं हो सकता। तो आज से संकल्प करें कि अमृत वेला हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। आप में से कौन है जो रेगुलर अमृत वेला करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, बिना नागर जाए, बिना कोई मिस किए आलम हाथ उठाए? अरे वाह, तो बहुत संख्या है। रेगुलर तो सब करते हैं, लेकिन किसी किसी का मिस होता है कभी कभी। ठीक है, अपने लिए ताली बजाए, इनको ताली बजाए इनके लिए। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस मंच से, डायमंड हॉल से आपको एक संकल्प देता हूं, यदि सचमुच हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, संगम के दिनों को मौजों का युग बनाना चाहते हैं, तो हमारा अमृत बेला और हमारी मुरली, ये दो अस्त्र और शस्त्र हैं, ये दो विषय हैं, ये दो हमारे पास ब्रह्मास्त्र हैं, जिनके द्वारा हम अमर हो सकते हैं। केवल उठना नहीं, शक्तिशाली अमृत वेला। आप यहां देखते होंगे, यहां बैठते भी हैं, जैसा बताया बहन ने भी, कि अमृत वेला विशेष अटेंशन जाता है। और जब से मैं मधुबन में आया, अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाऊं कि अमृत वेला को जब मैं दीदी को देखता था, दीदी मनमोहिनी को, तो वो रात को 11 बजे आई और सवेरे 4 बजे बैठी। मैंने दादी जानकी को देखा, दुबई में देखा, हम तो 20-25 किलोमीटर से आए, लेकिन दादी को जब भी देखा तो वहां का, दादी तो विदेशों की कल्चर का ये पता है, टाइम का एकदम एक्यूरेट, 4 बजे कि दादी बीच में बैठ गई। मैं दादी को देखता रह जाता था। पूरी यज्ञ में मैंने देखा कई भाई, हमारे ब्रजमोहन भाई जी को, उनको देखा, वो 3:15 बजे सवेरे उठ जाना, वहां दादी कोटिंग 2:30 से 3:15 वहां करना, और 3:15 बजे यहां जाना। लास्ट दिन जब यहां से गए, मैं यहां पर था, दृष्टि लिया भाई साहब से, उनकी ये विशेषता इतनी अच्छी लगती रही कि देखो हमारे वरिष्ठ ने अमृत वेले को इतना अच्छा एंजॉय किया है। अगर हम घरों में सेंटरों पे रहते हैं, घरों पे रहते हैं, और अमृत वेले को बड़े कॉमन रूप से कुछ झुटका खाए, कुछ घुटका खाए, कुछ बैठ गए, कुछ ऐसे कर लिया, ये नहीं। अब हम सबका काम है कि आज की इस क्लास से एक तो पक्का नोट कर लें कि अब शेष बचे हुए संगम के समय को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका समय समाप्त हो जाए, लेकिन समय जो बचा हुआ है जीवन का, वो अमृत वेला शक्तिशाली अनुभवों के साथ बीते। तैयार, रेडी, रेडी है, सब तैयार है, तो ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठें। ये जो आपको दिखाता हूं, ये जो आसन है, ये आसन बहुत अच्छा आसन है। जो भी निद्रा मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, बाबा तो कहते हैं बच्चे बाबा कष्ट नहीं देते, लेकिन आपका अगर मुद्रा जो है निद्रा की होगी तो आपको कोई बचा नहीं सकता है नींद से। इसलिए ऑलरेडी अलर्ट बैठने के लिए इस तरह के आसन बैठें, सीधा बैठें, आपकी रीढ़ रज्जू सीधा हो, सामने देखें, योगी का आसन हो ऐसे कि कोई देखे तो उसका भी योग लग जाए, चेहरे पर प्रसन्नता भी रहे, प्रभु मिलन का आनंद भी रहे, और उस फीलिंग के साथ बैठें कि किसके साथ मुलाकात है, कौन मिल रहा है, और अपलक प्रथम दृष्टि, अगर आपने पूरी आंखों को खोल करके लगातार 3 से 5 मिनट तक अगर आपने लगातार आंखों खोल के रखा, तो आपकी ये स्थिति आपको बहुत समय के लिए निद्रा से मुक्त रखेगी। लगातार देखें, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। ऐसे हाथ करें, फील करें कि जैसे बाबा को सामने देख रहे हैं। ज्योतिर्बिंदु बाबा है, पूरे ब्रह्मांड को जैसे हमने पूरे हाथों में बाहों में भर लिया है। और देखें, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है। ओ बाबा, आपके प्रेम ने घेरा है, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ये आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवान, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी है जैसे जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए। वाह बाबा, वाह बाबा, अभिनंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये आनंद के पल, संगम युग, रूहानी मौजों का युग है। प्रभु मिलन की वेला सवेरे, कौन कहता है जबर से बैठे भी हैं, झुटका भी खाए जा रहे हैं, बाबा के कमरे में सब देख रहे हैं और आगे बैठे पूरा सो गए, सरेंडर। ऐसा योग नहीं होता है। योग में भी बैठे हैं, यहां पर भी कोई बैठ जाते हैं, सारी दुनिया जा रही, विश्व के रंगमंच पर हम हैं। हम योगी हैं, मजबूर वाले नहीं। मजबूरी में उठा के बिठा दिया गया आपको कि बैठना ही है आपको। आपको जरूरी नहीं है कि लाल लाइट हो, सफेद लाइट कर लो। घरों में है तो झुटका योगी नहीं चाहिए। आज से झुटका योग नहीं। अगर झुटका खा रहे हैं तो उसका कारण का निवारण होना चाहिए। प्रभु प्राप्ति की वेला, परमात्म शक्तियों की प्राप्ति वेला, उसको झुटका में योग में ऐसे सोचाना, ये ठीक नहीं। बाबा भी ऊपर देखता है, वाह क्या ठगी है। कहता है कि मैं बाबा को याद करता हूं, रोज अमृत वेला उठता हूं, और मेरे पास तो आता ही नहीं। वो सो जाता है, ऊपर देखता है बाबा तो मुस्कुराता है, क्या ठगी है, है? होता है ना। आज से क्या करना है, आज से ऊपर ना जाओ, फील करो कि हम परमधाम में आ गए हैं, और शरीर सहित पूरी धरती को नीचे भेज दो, जैसे एक लिफ्ट आई थी और नीचे जा रही। ऊपर से अनुभव करो कि नीचे कहीं बहुत दूर कहीं ग्लोब है, ग्लोब में कहीं भारत है, भारत में राजस्थान, और कहीं आबू है, वहां पर कहीं पर मेरा शरीर है और मैं तो वतन में हूं। अब ऊपर ना जाओ, सबको नीचे भेज दो, ये सबसे सरल उपाय है। ऊपर जाते जाते बहुत कोशिश किया, ठीक है, अब ऊपर को ही नीचे ले आओ। इसलिए उस गीत में लिखा है, कभी तन से आए कभी तन में जाए, कभी तन से जाए कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को ही ले आए, लेकिन मंगल मिलाए भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ के, पल पल तुम्हें निहारा करूं। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाए, और मुरली को शक्तिशाली बना ले। मुरली को बार बार पढ़ें, औरों को सुनाएं, इस तरह से आपको एक शक्तिशाली अमृत वेला मिले, शक्तिशाली मुरली हो जाए, आप अमर हो जाएंगे। दो बात भी, ज्यादा नहीं, दो बात को अच्छी तरह से कर ले। आप कहेंगे भैया मुरली याद नहीं रहती, मुरली तब तक याद नहीं होगी जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे नहीं, जब तक औरों को नहीं सुनाएंगे तो मुरली याद नहीं रहेगी। ये अक्सर करके सबकी शिकायत है, आप इसको करके देखिए। मुरली को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपस में शेयर कीजिए। मैं तो कहीं क्लासेस में अक्सर करके बता देता हूं, जैसे मुरली पूरी हो आपस में दो दो को बिठा दो, तीन पॉइंट वो सुनाए, तीन पॉइंट वो सुनाए, पूरी मुरली का रिवीजन वहीं हो जाए। जो आपके मुख से निकलेगा वो आपको याद रहेगा, और जब तक मुख से नहीं निकालेंगे, जब तक औरों को सुनाएंगे नहीं, तो याद करने के बाद भी वो भूल जाएगी। इसलिए आज से ऐसा करें कि सुबह से शाम तक, आजकल मुरली के क्विज होते हैं, मैं तो इसमें पूरा दिन आत्मप्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दिन पहले से कविता बनाना, टेक्स्ट बनाना, ऑडियो बनाना, मुरली का चिंतन करना, शेयर करना, फोन पे बात करना, क्लास है तो उसका और भी मनन चिंतन करना, पॉइंट्स को याद करना, रात को सोने से पहले भी रिपीट करना। जब तक आप उसको आनंदित होकर के बाबा के प्रेम को अगर रसास्वादन करना है तो मुरली को आत्मसात करना होगा। ये परमात्मा का प्रेम पत्र हम बच्चों के लिए, जिसने इस मुरली के महत्व को जान गए, जो संगम युग के महत्व को जान गए, जो अपने जीवन के महत्व को जान गए, वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज से आप सब बड़े संकल्प के साथ कर लें। तो एक पहली बात बताई, स्नेही मूर्त बन जाए। दूसरी बात बताई, शक्तिशाली बन जाए। शक्तिशाली, अपने आगे एक लिस्ट बना लें, ये शक्तिहीन की निशानी है, ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है, और मैं फिर कौन सा, जिसमें अपने यहां एक बनाया भी है कि पराजित और विजेता की निशानी क्या है। शक्तिशाली वो है जो सोचता है और करता है, और शक्तिहीन की निशानी है जो सोचता बहुत है, होता कुछ भी नहीं, वो शक्तिहीन की निशानी। जो बोलता बहुत है, कर नहीं पाता, वो शक्तिहीन है, और जो बिना बोले करके दिखाता है वो शक्तिशाली होता है। ऐसे करके लिस्ट बना लें और अपनी चेकिंग करें। क्या ज्ञान सुनते ज्ञान का बल जमा हो रहा है? योग बल जमा हो रहा है? पवित्रता का बल जमा हो रहा है कि अकस्मकस है रात दिन? वही आज पूरी मुरली में देखिए, बच्चे कोई भी ऐसा एक्ट ना हो, काम ना हो, दुदिल खाती रहे, खुशबू आ रही है हमारे से, या खराब ख्याल तो नहीं हो रहे? पूरी मुरली का सार ये, अब लड़ाई झगड़े का योद्धा बनने का समय नहीं, अब योगी और निरंतर योगी बनने का समय। तो मजबूत बन जाए इसके साथ साथ, तो स्नेही मूर्त बने, शक्तिशाली बन जाए। तीसरा है, समय का सदुपयोग करें। यह संगम युग बड़ा अनमोल, जिसने समय की कीमत को समझा, संगम युग की महिमा क्या है। आपको होमवर्क देता हूं, आप सब नोट कीजिएगा, होमवर्क में देखें संगम युग की महिमा कितनी आप लिख सकते हैं। जितना आप संगम युग की महिमा लिख सकेंगे, उतना समझो कि आप समय के महत्व को जान रहे हैं और सफल भी करेंगे। चौथी बात, समय का सदुपयोग, चौथी बात है स्वास्थ्य की संभाल करें। हम सबका शरीर जानते हैं तमोप्रधान तत्वों के द्वारा बना है, बीमार अक्सर होते हैं, लेकिन हमारी इस बीमारी को, शरीर को बीमार करने का कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। अगर शरीर को संभाल करना है तो हमें क्या भोजन करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कहां कैसे इसको शरीर को चलाना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि यदि संगम युग का आनंद लेना है तो शरीर को चलाना आना चाहिए। क्या देना है, कैसे देना है, लापरवाही में इस शरीर को समाप्त नहीं करना है, जो फिर हमको दोबारा मिल नहीं सकता है। सबसे बड़ा अनमोल अगर देखा जाए तो ये हमारा शरीर है, इसके संभाल कीजिए, इसको चलाइए, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका ज्ञान हो, उसका ध्यान हो, और योग युक्त होकर के हम समय को पहचान करके अपने शरीर को यज्ञ में सफल करें। ठीक है, तो स्वास्थ्य की संभाल करें। पांचवी बात है, सबको सुख दें, शुभ भावना दें, शुभकामना दें, और सुख और शुभ भावना देने का सबसे अच्छा मार्ग है सबका सम्मान करें। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हमारे भाइयों को भी बहनों का पूरा सम्मान करना चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब से हमको ज्ञान मिला, हमने महसूस किया कि बाबा ने बहनों को कितना सम्मान दिया। कितनी भी छोटी बहन हो, कभी भी किसी भी भाई को कभी बहन के प्रति कोई बुरे विचार तो दूर, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, कभी उनके प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, कभी उनके प्रति हेय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सदैव सबका सम्मान करें, भाई बहनों का सम्मान करें, बहनें भाइयों का सम्मान करें, और हम सब मिलकर सबका सम्मान करते चलें, हम सब सम्मानित हो जाएंगे और सम्मानित दुनिया की रचना हो जाएगी, सम्मानित दुनिया की रचना हो। ये सम्मान की जो चीजें हैं देने का, ये हम भूलते जा रहे हैं। इसके बाद शुभ भावना सुख देने की कामना के बाद भगवान को अपना साथी बना ले और इस ड्रामा में साक्षी हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। ड्रामा को साक्षी होके देखते जाएं, तटस्थ हो जाएं, साक्षी दृष्टा की स्थिति बनती जाएगी। जितना जितना हम स्थित प्रज्ञ बनते जाएंगे उतना ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। अब मैं आपको 7 बात बता रहा हूं जो मैं प्रायः बताया करता हूं दिनचर्या का, वो नोट कर लें और पक्का कर लें, ये हमारी अंतिम बात है। पहली बात, उठते ही दिनचर्या में सबसे पहले हमारी दृष्टि बाबा पर पड़े। ये कोई जितना भी हो सके व्यवस्था कर लें, किसी देहधारी को नहीं देखना है, और उठते ही बाबा को नमस्ते करना है। एक बार नहीं, जब तक आप पूरा जाग न जाएं। नींद वाला नमस्ते नहीं, बाबा नमस्ते ऐसा नहीं, झुटका वाला नमस्ते नहीं, इतने प्यार से करें कि कौन हमारे सामने मौजूद है। बाबा को बड़े प्यार से नमस्ते कर लें। दूसरा, ये संकल्प के साथ अपना स्वमान लेकर के दिनचर्या का आरंभ करें कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं पवित्रता का अवतार हूं। बोलिए मैं शिव शक्ति हूं, बोलिए सब कोई बोले मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। घरों में बेलन उठा के खड़ी नहीं हो जाना है कि मैं शिव शक्ति आ जाओ, इसका मतलब है अंदर में इसका स्वरूप बन जाए कि मैं शिव शक्ति हूं, तो आपके अंदर जो शक्ति है उसका आह्वान करेंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। तीसरी बात, अमृत बेला पावरफुल करें, रेगुलर करें। चौथी बात, बाबा की मुरली का पूरा फॉलो करें, ध्यान रखें। पांचवी बात है कर्म योग करते चलें, ऐसे हाथ करें, अपना हाथ करें और अनुभव करें कि शिव बाबा मेरे सिर पर यहां पर है, बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, किरणें आ रही हैं मुझ आत्मा पर, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा, ये आपको शक्तिशाली बना देगा। बहुत अच्छा, ये निरंतर करें, खाते पीते चलते फिरते, मैं गाड़ी में चला रहा हूं, गाड़ी के ऊपर देखो बाबा की लाइट पड़ रही, यही एक अभ्यास करें। इस अभ्यास को इतना करें कि ये आपके सबकॉन्शियस में, रात को सो रहे हैं तब भी लगता है कि मैं बाबा की लाइट में सो रहा हूं, तभी आपका चेहरा लगेगा वाह, सो रहे हैं तो सोना भी सेवा हो जाएगा, जैसे कोई फरिश्ता सो रहा है, निद्रा पर भी आपको नियंत्रण मिलेगा इस तरह से। तो ये करें, भोजन के समय पर कर लें, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, दो बार दोहरा के फिर शुरू हो जाओ। और कर्मयोग में लास्ट करें, कर्मयोग के साथ में एक साथ मेरे साथ कर लें अभ्यास, मैं ज्योति सितारा, बोलिए मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। और छठी बात है एकांत लेना, आत्मचिंतन करना, चार्ट लिखना। और सातवीं अंतिम बात है, रात को सोने से पहले सबका धन्यवाद कर देना। धन्यवाद इसका करें, ऐसे कर दें, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे दूसरा धन्यवाद साथियों, और सबसे ऊपर हाथ उठा के प्यारे बाबा का धन्यवाद, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति।
तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा।
अभी हम सब इसी योग की अवस्था में बैठे रहेंगे 8 बजे तक, जैसे कि आदरणीय सतीश भाई जी ने हमें गाइड किया, वो अभ्यास हम दोहराते हुए योग का बहुत सुंदर वातावरण बनाएंगे। भाई जी का एक हाथ की ताली से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।